جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سے لوگ میرا عمرہ کا ایکسپیرینس جاننے کے لیے بہت بے چین تھے, اور بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے کہ آپ سے کس طرح بیٹھ کے یہ سب سنا جائے. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ سب کو, جتنے آپ لوگ مجھے پیارے ہیں اتنے ہی وہ بھی پیارے ہیں جو کہ دور بیٹھے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جن کو میں نہیں بھی جانتی لیکن وہ بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں, تو سب ہی سننا چاہتے ہوں گے. گو کہ کئی چیزیں آپ کی اتنی پرسنل ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو شیئر کرتے ہوئے بھی اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, لیکن چونکہ میں ایز ٹیچر آپ کو صرف سکھانے کی خاطر یہ شیئر کر رہی ہوں, ادروائز مجھے کچھ زیادہ مطلب بہت ہی میری پرسنل باتیں ہیں. وہ میرا جو عمرہ کا ایکسپیرئنس ہے الحمدللہ اتنا اچھا ایکسپیرئنس ہے, اتنا جس کو کہیں گے اسپریچولی اپلفٹنگ تھا میرے لیے, ایمان کو بوسٹ دینے والا. تو سمجھ لیں کہ اس کے بعد ایمان کا ایک اور ٹیکا لگ جاتا ہے. تو جیسے کہ مجھے ایسا لگتا ہے بالکل رمضان ہے نا, کہ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں ایک اسپریچول اپلفٹ, اسی طرح عمرہ مجھے لگا کہ جو 10 دن کے اندر جو کچھ مجھے وہاں پہ ملا ہے, میرے خیال میں اپنے گھر بیٹھ کے چاہے کہ میں کتنا بھی پڑھتی رہوں, کلاسیں ہوں, ادھر ادھر سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں, وہ چیز نہیں میں پا سکتی جو مجھے وہاں پہ ملی. ایک تو جو سفر اللہ کی خاطر ہونا, اس سفر کا مزہ ہی الگ ہے. کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور یہ سوچ لیتا نا کہ اللہ تیرے راستے کے اوپر ہوں اب میں, تو وہ ایک جو خوشی سی ہوتی ہے نا محسوس, جیسے آپ بازار جائیں تو ایک الگ خوشی ہوتی ہے کہ چیزیں ملنی ہیں, کہیں مسجد آنے لگتے ہیں تو دوسری طرح کی خوشی ہوتی ہے, جب اللہ کے گھر جانے لگتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ میں اللہ کی مہمان ہوں, تو وہ جو خوشی ہے اس کا کیا بیان ہوگا, کیا ایسا کوئی اور سفر ہو سکتا ہے. پھر وہ جو سارا راستہ ہے اس میں کٹتا ہے انسان کا کہ کب وہ وقت آ جائے کہ اللہ تیرے گھر کو دیکھ لے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا یا عمرہ یا حج, یہ وہ عبادات ہیں یا یہ وہ چیز ہے, یہ وہ دیدار ہے جو صرف اس زندگی میں ممکن ہے. جب انسان کو موت آ جائے تو کتنا بھی حج کرنے کی کوشش کریں, جنت میں جا کے عمرہ کرنے کی کوشش کریں, کہیں جا کے آپ نہیں کر سکتے, تو یہ چیز صرف یہاں پہ پاسبل ہے. اور اس کی یہ نہیں کہ کوئی ایک ریچول ہے ہاں ہمیں اس کا ثواب ملے گا, یا یہ جو ایک خوشی ملتی ہے نا اس سے اپنے لیے, میں اپنی بات کروں گی کہ میرے اپنے لیے میں نے اپنی خوشی کے لیے کیا, یعنی مجھے دل کو اتنی زیادہ اس چیز سے وہ ایک سرور تھا نا کہ اللہ کے گھر پہنچوں اور کب اس کو دیکھوں. تو جب ہم وہاں پہ گئے اور جو پہلی نظر کعبہ پہ پڑی ہے, تو بس وہ ایک جیسے جدائی ہے نا, بہت دیر کی جدائی ہے, تو وہ جو چیز تھی وہ یعنی بیان سے باہر ہے. اور میری جو دعا تھی پہلی نظر کعبہ پہ پڑھتے ہی, آپ اپنی اپنی دعائیں سب مانگ سکتے ہیں لیکن وہ یہی تھی جو عباد الرحمن مانگتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں نے کہا اگر متقین کے امام بن گئے تو انہی کے لیے تو جنت ہے, تو اللہ بس متقین کے امام بنا دے, اور متقی تو جہنم میں نہیں جائیں گے, وہ تو سب کچھ ہی مانگ لیا اور ہر طرح کا قرار سکون مانگ لیا, کیونکہ سکون ہے ہی اس کے اندر جب آپ اپنی اولاد کو, اپنے شوہر کو, اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اس طرح کے اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہیں, تو وہ سب سے ایک بڑا سرور ہوتا ہے آپ کے لیے. تو وہ ایک بہت وہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ جو میں گئی تھی نا, شاید عبادت کہہ سکتے ہیں, اگر ہم عبادت ریچول سمجھتے ہیں تو شاید اس کے لیے نہیں, میں شروع سے اللہ کو یہ بات کہہ کے گئی تھی کہ اللہ میں مانگنے آ رہی ہوں کیونکہ میں فقیر ہوں اور میں ہر چیز کی محتاج ہوں تجھ سے, اور میرے تھرو آؤٹ اس کے اندر میں مانگتی ہی رہی. حالانکہ آپ طواف کرتے ہوئے تلاوت بھی کر سکتے ہیں, ذکر تھوڑا بہت ہوا, تلاوت نہیں ہوئی, مگر دعائیں, میری دعائیں ختم نہیں ہوئیں, میری دعائیں اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے ایک ایک سانس ایک ایک قدم پہ اللہ کی محتاجی ہے, اللہ مجھے تیری ضرورت ہے اور مجھے تیری مدد چاہیے, میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تیری مدد کے بغیر. और आप लोगों सबके लिए, जितनी ऑनलाइन जिस मुल्क में जिस जगह पे भी जो हमारी क्लास के लोग हैं, जो हमारे मुआविन हैं, जो हमारे एडमिन्स हैं, जो हमारे ग्रुप इंचार्जेस हैं, सबके लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की कि आखिर में तो मैंने ये कहा कि अल्लाह जितनी मैं अपने लिए दुआएं कर रही हूँ वो सब इनके हक में कबूल फरमाना। और मुझे ये ख्वाहिश थी यहाँ से ही कि मैं मीज़ाब रहमत के नीचे दुआ करूँ। मैं अपना इंशाल्लाह ताला उम्रे का स्टेप बाय स्टेप गाइड के नाम से इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जिसमें एक एक चीज़ स्टेप बताया जाए ताकि जो लोग उम्रा पे जाएं उनके लिए आसानी हो जाए। तो जब से मुझे पता चला था कि इस जो परनाला ऊपर से आता है काबा के ऊपर है, इसके नीचे दुआएं कबूल होती हैं, तब से बस ये था कि इस तक पहुंच जाऊं, और अल्लाह ने पहुंचाया और बहुत दफ़ा पहुंचाया। और उसके नीचे जो दुआएं करने का लुत्फ़ भी था, और जो वहाँ के मनाजिर हैं वो मैं कहती हूँ मैं आपको कितनी भी पिक्चर्स दिखा दूँ या यहाँ पे वीडियो चला दूँ सारी, वो कैप्चर नहीं कर सकती, इसलिए कि जो सकीनत उतर रही थी ना वहाँ पे, वो किसी पिक्चर में नहीं आ सकती। जो रहमतें उतर रही थी वो किसी पिक्चर में नहीं आ सकती। हत्ता कि यानी आप ये अंदाज़ा करें कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर कोई गैर मुस्लिम यहाँ आ सकता होता और कोई गैर मुस्लिम भी यहाँ आ जाएगा तो जो यहाँ पे यानी जो एनवायरनमेंट जो जहाँ पे अल्लाह की रहमतों का अंदाज़ा हो रहा है ना, महसूस हो रही है, वो भी देख के मुसलमान हो जाए। इतनी अल्लाह की रहमत महसूस होती है कि अच्छा फिर वो जो लोग हैं वहाँ पे उनके लिए भी मैंने बहुत दुआ की। जितने लोग थे वहाँ पे जो तवाफ कर रहे हैं, जो दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मैं जज्बात देख रही थी ना, मैं ये नहीं कहती कि क्या सुन्नत है क्या बिदत है क्या, उसके अंदर पड़े बगैर लोगों के जज्बात ये थे, जाहिर है इतना इल्म भी नहीं होता, तो वो जिस चीज़ को देख रहे थे ना उसके साथ चिमट के चूमना शुरू कर देते थे। अगर मकाम इब्राहिम है तो जो उस तक पहुंच गया वो उसको चूम रहा है, जो काबा के किसी तरफ भी चला गया, ये शायर अल्लाह है ना, अल्लाह की निशानी है, तो वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को चूमा था, सुन्नत है, मगर उनका जो वालेहाना एक अंदाज था ना, इतना मुझे उसने इम्प्रेस किया कि मैंने कहा अल्लाह सारे तेरे दीवाने, सिर्फ तेरी खातिर आए हैं ना यहाँ पे, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ बैठे हुए थे, सिर्फ तेरे लिए ये यहाँ आए, और गर्मी है या रश है या धूप है या जो भी है वो इसे बेपरवाह के, चाहे हजूम कितना कितने धक्के पड़े, हर कोई कहता है मैं काबे से चिमट जाऊं, जैसे उसको एक अल्लाह से कुर्बत महसूस हो रही कि इसे चिमट जाऊंगा तो पता नहीं अल्लाह से करीब हो गया। वो सब चिमटते जा रहे हैं, उसको चूम रहे हैं उसके, और इतनी रोने की आवाजें आती हैं जब आप काबा से चिमटते हैं इर्द गिर्द लोगों की, सब किसके लिए आए, अल्लाह सब तुझसे कुछ मांग रहे हैं, अल्लाह तो सबको अता कर दे, सबकी बख्शिश कर दे, क्यों, इसलिए अल्लाह तेरे तेरे दीवाने हैं। मैं ये सोच रही थी कि अगर काबा को देखना मेरे लिए इतनी वो चीज़ थी कि मैं हर वो स्पॉट ढूंढती थी कि जहाँ से मेरी नज़र इस पर पड़ जाए, बस यहाँ मैं बैठूँ, नमाज के वक्त तो नहीं आप उस वक्त देख सकते, लेकिन नमाज के बाद बस मैं इसको देखती रहूँ। तो हमारा मामूल ये था कि हम तहज्जुद पे चले जाते थे, फिर फजर पढ़ के फिर उसके बाद मैं सेहन में बैठ जाती थी, क्योंकि सेहन में आगे पीछे बैठने का जो है ना वो इजाज़त नहीं है औरतों को जब फ़र्ज नमाज होती है। तो तहज्जुद के बाद हम जाते थे तो हम तवाफ़ कर लेते थे, उसके बाद हम फजर के लिए मैं पीछे आके नफल पढ़ती, फिर उसके बाद फजर पढ़ के फिर जब सेहन में बैठती थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं काबा को देखूं। उस वक्त आप यकीन करें मैं अपने अज़कार करती थी और मैं कुरान भी नहीं खोलती थी कि अगर कुरान खोलूंगी तो इसमें देखना होगा तो फिर इसको कैसे देखूंगी। तो फिर यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह जब मौत आए ना तब भी तो काबा को सामने कर देना कि उस वक्त हमें करार आ जाए कि अल्लाह हमारी जगह अच्छी है। तो वहाँ से जो उसका मंजर था बस देखते जाओ, और क्या बात है उसमें मैं नहीं बता सकती, क्या चीज़ है उसमें क्या मैं वर्ड्स में बताऊं नहीं बता सकती, क्योंकि वो फीलिंग मुझे नहीं समझ आती मैं उसको कैसे बताऊं, और अल्लाह तूने उसमें क्या रखा है ये आई डोंट नो, मगर उस वक्त महसूस होता था कि यहाँ पे इस फिजा में कुछ है, पता नहीं कोई फरिश्ते हैं, पता नहीं अल्लाह तू कुछ, सकीनत कैसे उतरती है ना, वो कहते हैं ना मजलिस जो जिक्र की मजलिस होती है उस पर सकीनत उतरती है, वो समझ नहीं कभी आता व्हाट इज सकीनत, तो वहां पे जाके पता चलता है सकीनत क्या है, वहां पता चलता है कि ये सकून और रहमतें उतरना क्या चीज होती है, वो वाकई अल्लाह का घर है वाकई पता चलता है। फिर वहां बैठ के सिर्फ अल्लाह से बातें और काबा को देखते रहना, सिर्फ अल्लाह से बातें, और मैं ये सोचती अल्लाह अगर तेरे घर का दीदार इतना प्यारा है तो जिस दिन तेरा दीदार करेंगे उस दिन क्या होगा कि आज हमें इतना प्यारा लग रहा है और इससे नजर नहीं हटती, तो अल्लाह हम वो कैसे गवारा करेंगे कि जब वो टाइम ओवर हो जाएगा कि अब जाओ, अब आपकी बारी एक हफ्ते के बाद आएगी। क्योंकि जन्नत में हर एक के लेवल्स हैं, किसी को हर दिन दीदार होगा, किसी को हफ्ते बाद होगा, किसी को कैसे होगा, आपके लेवल के मुताबिक। तो अल्लाह इसको देखने से जी नहीं भरता, और इसके लिए यानी मैं अपना तो छोड़ दें, मेरा बेटा वो तो मतलब इतनी उससे समझ नहीं है 13 साल का, तो माशाल्लाह वो भी कहता कि जब हम होटल में जाते हैं तो वापस आते दिल जाता है फौरन काबा को देख ले। क्या चीज़ है, क्या चीज़ है वो, कुछ ये बयान नहीं हो सकता। और कोई मूवी, कोई पिक्चर, कोई कितनी ही ज़बरदस्त फोटोग्राफी कर लें, लोग फोटोग्राफ्स लेते, फोटोग्राफ कैसे वो आपको बता सकती है चीज़, ये दिल की कैफियत है। और जो बातें अल्लाह के साथ है ना, वो जो हम घर में हम जब होते हैं तो हम घर में कामों में या अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हम बस दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, अक्सर इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के आराम से बातें करें। तो वो जो अल्लाह से बातें करने का लुत्फ है ना, कि ना कोई खाना बनाना है, ना कोई घर साफ करना है, ना कोई और काम है, ना कोई बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, कुछ भी नहीं है, बस एक अल्लाह तू और मैं। इतने हजूम में भी आप अल्लाह के साथ कनेक्शन अपना बांध लेते हैं, और वो जो बातें होती हैं उस वक्त उनका मज़ा ही क्या है। लेकिन उसके लिए आपको पहले से अल्लाह के साथ इतना कनेक्शन होना चाहिए कि आप बातें कर सकें, कि घंटा भी गुजर जाए और घंटों भी गुजर जाए तो आपकी बातें ना ख़त्म हो, कि उसमें दुआएं भी हैं, उसमें बातें भी हैं, उसमें शुक्र भी हैं, उसमें सब कुछ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे मौका मिला हतीम में नमाज पढ़ने का या रुकने यमानी को छूने का, हिजरे अस्वद को तो नहीं छुआ गया, ये मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ है और इतना मेरे लिए ये यानी जो सेटिस्फेक्शन है उसकी वो इतनी ज़्यादा है कि वो कोई भी चीज़ कोई मिल जाए तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो वो जो दीवाने थे वहाँ पे वो इसी तरह बस घूम रहे थे, और मैं तो खैर दुआएं मांगती रही सारा टाइम, और अल्लाह के घर के दरवाजे के आगे भी खड़े होकर मैंने दुआएं मांगी कि अल्लाह अब मैं तेरे दरवाजे पे आ गई, और दरवाजे से कोई सखी हो तो अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ में किसी को लौटा था, तो मैं तेरे दरवाजे पे खड़ी नहीं हूँ, अब तू मुझे खाली ना लौटाना, बल्कि अपनी शान के मुताबिक अता करना, मेरे मांगने के मुताबिक नहीं ना। हम किसी को देने लगते तो हम ज़्यादा दे के भेज देते हैं कि चलो ले लो, तो तू सखी है तो तू मुझे ज़्यादा दे के लौटाना। तो ये मुझे एक बहुत मेरे लिए स्पिरिचुअल अपलिफ्ट का टाइम था वहाँ पे।
जहाँ तक सफ़ा मरवा की सही का ताल्लुक है, तो सुभानअल्लाह उन रास्तों पर चलते हुए जो सही का रास्ता था, एक ही ख्याल आ रहा था कि बीबी हाजरा जब यहाँ पे दौड़ी होंगी तो कैसा वीरान होगा ये इलाका, कितनी धूप होगी, कितनी गर्मी होगी, इतना लंबा फासला है सफ़ा और मरवा के दरमियान, कोई कम नहीं है, अच्छा खासा फासला है, और हम थक जाते हैं। लेकिन वो तनिए तनहा अकेली औरत बच्चे को भी देख रही हैं, वहाँ भी दौड़ रही हैं, तो एक दुआ जो थी वो मेरे दिल में आई कि अल्लाह हमें भी इस तरह अपने रास्ते पे दौड़ा देना, और जैसे उनके कदमों के निशान आज तक बाकी हैं कि तूने सदक़ा जारिया बना दिया उनके लिए इस अमल को, अल्लाह हमारे से भी कोई ऐसा काम ले लेना जो सदक़ा जारिया बन जाए, जिसको देख के लोग आइंदा आने वाले लोग उससे रहनुमाई लें और उन कदमों पे चलें जिन पे हम चले हों, तो मुत्तकीन का इमाम बनाना बहुत ही, वो भी इतना ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था जो सफ़ा मरवा की सही थी। और जब भी थोड़ी सी भी थकन महसूस होती थी तो बीबी हाजरा फौरन याद आ जाती थी, और फिर हिम्मत आ जाती थी कि हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, हम एसी में भाग रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे ठंडी ज़मीन है और इनक्लोज्ड है बिल्डिंग, और इतने आराम से कर रहे हैं, और वो तो एक औरत हो के और कैसी हालात के अंदर और कितनी टेंशन के अंदर कर रही थी। तो बस वहाँ पे भी दुआएं थी सारा सफ़ा मरवा की सही के दौरान, अल्हम्दुलिल्लाह।
और दूसरा जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हुआ वो था कि जब हम मक्का से मदीना जाने लगे तो हमारे ड्राइवर ने हमसे पूछा कि क्या आप उस रास्ते से जाना चाहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का रास्ता है, या आप हाईवे से जाना चाहते हैं जिससे सारे लोग ग्रुप्स जाते हैं। तो हमने कहा कि हम हिजरत के रास्ते से ही जाएंगे। तो जब वो हमें हिजरत के रास्ते से लेकर गया तो वो रास्ता जो था वो उन्हीं उन पे बना हुआ है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। वो सिंगल रोड है, वो लंबा रास्ता है, इसलिए ग्रुप्स वाले वहां से नहीं लेकर जाते। और वहां पे पहाड़ हैं पथरीले, और ये जो अभी बात हुई ना कि कीकर के दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, यकीन करें आज भी वहां पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है सिवाय झाड़ियों के। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो रास्ता ऐसे चलता जा रहा है। और मैं बस उसमें इसी सोचों में थी कि हम गाड़ी में बैठे, एसी में बैठे हैं, और हम इस रास्ते पर जा रहे हैं, और ये कितना लंबा रास्ता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पैरों के साथ और सवारी के ऊपर इस रास्ते को तय किया होगा, और आगे अभी पता नहीं है कि क्या, और पीछे दुश्मन का खतरा है। हाँ, तो कैसे इस रास्ते पर चले होंगे जहाँ पे पहाड़ है और सहरा है, बस रेत है और झाड़ियां कहीं कहीं, और बस। और इसी रास्ते के बीच में हमने फिर बदर में थोड़ा सा टाइम गुजारा, और वो जो वहां पे टाइम था, क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं और चूंकि वो जगह ऐसी है जो अभी तक समझ लें वैसी ही है जैसे कि थी, बाकी जगहों को तो चेंज कर दिया ना, बिल्डिंग्स बना दी, तो यहाँ पे नहीं था ऐसा। यहाँ पे बदर का मैदान देखा, फिर खास तौर पे वो जगह जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के सहाबा से मशवरा किया था कि क्या हम अबू सुफियान के काफले के पीछे जाएं या हम जंग करें, उस जगह पे मस्जिद है, और वहां पे हमने जोहर की नमाज पढ़ी। और वहां इतना ज्यादा इस चीज का वो हुआ कि यहाँ पे उन सहाबा ने कहा था कि या रसूल अल्लाह अगर आप कहेंगे कि समुंदर में घोड़े भी डाल दो तो हम आपके पीछे वो डाल देंगे, ये वो जगह है, हम वहां खड़े हैं। और वहां पे जो और टूरिस्ट आए थे उनको मैंने थोड़ा सा बताया, हमारे वहाँ के थे, हमारे ही इलाके के, तो उनको मैंने बताया कि ये वो जगह है, तो वो भी हैरान हुई कि अच्छा ये ऐसी जगह है, यानी लोग आ जाते हैं लेकिन उनको अंदाजा नहीं है। फिर बदर का मैदान देखा और वो कुआं देखा जिसमें अबू जहल और इन काफरों के सारे डाले गए थे, इनको कत्ल करके इनको डाला गया था, इनकी लाशों को। और इसी तरह वो कब्रिस्तान देखा जहाँ पे शुहदाए बदर है जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया, वो यंगस्टर टीनेजर, हाँ उन उनका। और बस ऐसे है कि मट्टी है और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ऐसे से छोटे से पत्थर रखे हैं सर पे, ये वो लोग हैं शुहदाए बदर जिनसे जन्नत का वादा है। हाँ, जो कुछ भी ना करते और जो जिंदा थे वो भी कुछ भी ना करते तो बदर उनके लिए काफी था। शुहदाए बदर का क्या मकाम है, और उनकी कब्रें देखो कुछ भी नहीं, इसी बदर के मकाम पे शुहदाए बदर का कब्रिस्तान था ना। तो आप ये देखिए कि हम तो ऊंचे ऊंचे मकबरे और संगे मरमर और क्या क्या लगाते हैं कब्रों पे, और कहते हैं ये हमारे प्यारे हैं ना इसलिए, और वो अल्लाह के प्यारे हैं, और उनकी कब्रें देखो। उनकी कब्रें तो फिर बहुत बड़े ताजमहल होने चाहिए थे, लेकिन देखो इससे पता चलता है कब्र बनाने से कुछ नहीं होता, असल तुम्हारा मकाम है जो अल्लाह की नजर में। और सबसे प्यारा मुझे जबले मलाइका लगा जिस पे फरिश्ते उतरे थे जो बदर में जंग करने के लिए आए थे, तो वो रेत का पहाड़ है और लाइट ब्राउन से कलर का, बाकी सारे पहाड़ उसे इतने डिफरेंट लगते हैं, और ये देख के इंसान ऐसे हो जाता है कि ये इस जगह पे फरिश्ते उतरे होंगे और वो फिर आके लड़े हैं, और बाकी पहाड़ ऐसे हैं, और ये कैसा रेत का इतना प्यारा पहाड़ जबले मलाइका। जी बिल्कुल वाइट लगता है बाकियों के मुकाबले में, लाइट ब्राउन सी इसकी रेत है। और नहीं जाते, एक चीज का फिर मैंने वहां पे अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाला जो वहां पे मैंने एक डिसाइड की चीज, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जितने भी सीरा के स्टूडेंट्स हैं सब के लिए, कि मैंने सोचा है कि जब हमारी इंशाल्लाह सीरा मुकम्मल होगी तो मेरी तरफ से इन्विटेशन सबको है जो भी जा सके, तो हम एक ग्रुप वहाँ पे जाएं, और उम्रा तो हम करेंगे लेकिन जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं हम वहाँ पे, आपको मैं मसलन एक टॉपिक दे दूँ, बदर का आपका है, आपका ओहद का है, आपका फॉर एग्जांपल गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी थी वो जिंदगी वो है, किसी का काबा का है, किसी का मस्जिद नबवी का है, वो वहाँ जाके हमें खड़े हो के वो बताएंगे, ये उनका टेस्ट है, और उनके हस्बैंड्स जो हैं वो मर्दों को बताएं, ये है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो जा सके। मेरी ख्वाहिश है आगे अल्लाह पूरी करे, दुनिया में जहाँ पे भी कोई है जिस वक्त हमारा वो इंशाल्लाह होगा वो भी वहाँ पे आ सकते हैं और सारे हम ग्रुप वहाँ पे जाके और इस तरह अपनी बहनों को भी मिलेंगे और वहाँ पे इन यादों को ताज़ा करें जो क्लासरूम में बैठ के नहीं हो सकती, जो वहाँ पहुँच के उस जगह खड़े होके जब हम ये कहें कि ये है बतर, तो वो चीज़ हमारे सामने लिविंग हो जाती है कि हाँ ऐसा हुआ है। अभी तो ऐसे जैसे कोई इमेजिनेशन है वो उसके अंदर हम चल रहे होते, जब आप उन चीज़ों को देखते हैं हाँ वाकई ये ऐसा ही था। फिर हमने बैरे शिफा देखा, जो जो कुआं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक डाला था, वो कड़वा था तो वो मीठा हो गया। इसी तरह बैरे रोहा देखा हमने जिस पे 70 अंबिया ने वहाँ से पानी पिया हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के जो जख्मी थे उनको वहाँ पे उनको पानी पिलाया था। फिर मस्जिद नबवी का जो था ना मेरा, वो इंतहाई अल्लाह ने खूबसूरत बना दिया, इसलिए कि वैसे तो जब आप जाएं तो औरतों के हिस्से में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुछ देखने का या कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि जब रियाजुल जन्ना जाना था और जब उन्होंने उसके लिए दरवाज़ा खोला औरतों का, तो मैंने वेट किया कि सब चले जाएं क्योंकि भाग दौड़ बहुत थी। 1 घंटे के बाद जब मैं आराम से गई तो उन्होंने फिर आगे ले जाके हमें बिठा दिया कि नहीं अभी भी बहुत रश है आगे, और मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। बाकी लोग बहुत बेचैन थे और वो भाग के जा रहे थे छुप छुप के उनसे, लेकिन मेरे लिए वो इतना अच्छा था इसलिए कि मैं वहाँ बैठ गई और मैं आप सामने देख रही हूँ तो असहाबे सुफा का चबूतरा जहाँ पे है, हज़रत फातिमा का हुजरा, हज़रत आयशा का हुजरा जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है। मैंने कहा इससे ज़्यादा मैं करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप रियाजुल जन्ना में पहुँच जाएँ तो वहाँ पर सिर्फ धक्कम पेला, आप तो कुछ सोच ही नहीं सकते, आप इतने वो बुखलाए हुए होते कि सिर्फ 2 नफल पढ़ के आपने निकलना है, बस आपको ये होता है। लेकिन वहाँ बैठ के जो बातें हुई और जो यादें आई मुझे, जो मेरी इमेजिनेशन की यादें हो सकती जो हमने पढ़ा है कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुजरे से अपने मिंबर तक जाते होंगे जो रियाजुल जन्ना है, और कैसे इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने ये मस्जिद नबवी तामीर की, इस जगह पे कैसे उन्होंने पत्थर उठाए, कैसे उन्होंने चीज़ें उठाई, कैसे ये जगह थी और आज कैसी है, उनका जो ईमान था उसके लेवल का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। वो जो मस्जिद थी वो क्या थी, खजूर की छालें थी उसकी छत थी और कैसे वो थी, मट्टी गारे की बनी हुई, लेकिन जो उसमें नमाज पढ़ने वाले थे उनका ईमान पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत था। और आज उस मस्जिद नबी में इतने ऊंचे ऊंचे सतून भी हैं, गोल्ड लगा हुआ है, संगे मरमर लगा हुआ है, लेकिन इसमें नमाज पढ़ने वालों का ईमान कुछ भी नहीं। आज इसमें कालीन बिछे हुए हैं इंतहाई आरामदेह, वो तो मट्टी के अंदर सजदे करते थे, हाँ कोई कालीन नहीं था, कोई फर्श नहीं था, लेकिन उनकी ईमान की बातें ही क्या थी। फिर मुझे याद आया कि यहीं पे कोई वो मेंबर होगा ना जो रोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में कि मेरे पास से गुजर गए, वो मुझे याद आया कि यहाँ पे वो मेंबर, यहाँ पे सुमामा बिन असाल को बांधा होगा सतून के साथ और वो फिर ईमान लेकर आए थे, यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे ये हुआ, वो इतनी बातें थी और मेरा सिर्फ रोना था, सिर्फ मैं वहाँ पर रो रही थी। मैंने कहा लोग भी कह रहे होंगे कि यहाँ पर इसको रोने की क्या ज़रूरत है। और जब मैंने सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जैसे मेरे जहन के आगे से गुजर रही थी, तो एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो हुई कि मेरे अंदर से ये हो रहा था कि अल्लाह उनको अब कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कितनी उन्होंने तकलीफ़ें उठाई, कितनी उन्होंने यहाँ पे कितनी तकलीफ़ें उठाई, मक्का में कितनी तकलीफ़ें उठाई, उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। फिर मैंने सोचा अब तो उनको कोई भी नहीं तकलीफ़ पहुँचनी, अब तो वो इतने आला उसके ऊपर है मुकाम पे। ये भी ख्याल आया उसके बाद, ख्यालात ही सोचती जा रही थी कि हशर के दिन, हाँ उस दिन उनको तकलीफ हो सकती है जब वो अपनी उम्मत को देखेंगे ये क्या करके आए, तो उस दिन अल्लाह मेरी वजह से कम अज़ कम उनको कोई तकलीफ ना हो, मेरी वजह से ना मैं उनको न, मैं कोई बाइस ना बनूं, उनको इतनी तकलीफ हुई और वो सारी तकलीफ उन्होंने हमारे लिए झेली कि ये दीन हम तक पहुंच जाए, और मेरे लव उनके लिए जो मोहब्बत है उसका तकाजा ये है कि अब मैं वो काम ना करूं जिससे उनको उस दिन शर्मिंदगी हो या मेरी वजह से उनको जरा भी तकलीफ हो, बस। और फिर उसके बाद उन्होंने वहां जाने के लिए खोला, अब भी देखे फिजिकली हम वहाँ ना रोजा तक पहुंच सकते हैं, आपको पता है उनके आगे भी उन्होंने बुक शेल्फ भी रखे हुए हैं, और आगे जाके मर्दों की तरफ है ज्यादातर एरिया जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, मगर जो करीब तरीन हो सकता था, जो उस फिजा में सांस लेना था जिसमें मेरे नबी ने सांस लिया, वही मेरे लिए बहुत था। और जिन जगहों पे वो चले हैं वहां पे मैं बैठी हुई हूँ, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि मर्दों के एरिया में वैसे भी नहीं आप जा सकते। और यही सारा मदीना तो यही था, जितना मस्जिद नबी की जगह है वही मदीना था। तो वहां पे बैठना और वहां पे टाइम गुजारना, दिल चाहता था कि वक्त रुक जाए और बस यहीं बैठ के बातें करते रहो। बातें तो अल्लाह से ही थी, तो बातें सारी उन्हीं की थी जो वहां पे, उनसे तो नहीं हम बात कर सकते, उन्हें सुन सकते, लेकिन बातें अल्लाह के साथ ही थी। तो अल्लाह उनको बताना कि हम यहाँ पे आए। और आज वो अगर देखें तो उनके कितने उम्मती हैं जो बस भाग रहे हैं, बाहर भी हैं अंदर भी हैं, सहन में भी बैठे हैं, उधर हरम में चले जाओ, कितने खुश हूँ आज अपनी उम्मतियों को देख के कि इतनी मेरी उम्मत की कसरत है, क़यामत के दिन उनको नजर आएगी ना, ये देख लो यहाँ पे। और सबसे एक बड़ी बात जो पता चलती है वो ये कि जब आप हर रंगो नस्ल के लोग देखते हो कि वहां पे मौजूद है, हर बोली लोग बोल रहे हैं, तब आप सोचते मेरे और इनके अंदर सिर्फ एक चीज कॉमन है, और वो है ये कलमा, वो है ये दीन। तुम कहीं के भी हो, इट डजेंट मैटर, तुम और मैं एक हैं क्योंकि हम एक कलमे पे हैं। लेकिन एक चीज जो जिसका दुख हुआ वो ये थी कि मुझे कोई गोरे लोग नजर नहीं आए, जिनको हम वाइट पीपल कहते हैं, कोई नजर नहीं आए। जिसको भी मैं समझती थी वो उसके बाद कुछ टर्किश बोल रहा होता था, या कोई कोई जैसे यहाँ की अंग्रेजी है, या वो नहीं आपको ना। तो मुझे ये ख्याल आया कि जितना काम किया वो सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, उनके बाद वालों ने किया, लेकिन इसका मतलब है जितना जहां तक वो दीन इस्लाम को फैला गए बस वहीं तक रहा। उसके बाद हमारी कोशिशें कोई ऐसी नहीं थी कि यूरोप में फैल जाता, यहाँ पे अमेरिका में क्या फैल जाता, कि जैसे बाकी नेशनैलिटीज वहां पे हैं, यहाँ के काले लोग, यहाँ के गोरे लोग, वो सारे वहां पे क्यों नहीं है उसी तरह जैसे बाकी इतने मुल्कों के लोग नजर आ रहे हैं। इससे मतलब हमारी कोताही है, उन्होंने अपनी जिंदगियों में काम किए थे, वो आज तक उसके असरात है। कहाँ इंडोनेशिया, कहाँ मलेशिया, कहाँ कहाँ के लोग हैं, यहाँ के क्यों नहीं? इसलिए कि हमारा काम उस तरह से नहीं है जैसे उनका काम था। और आपने देख ही लिया सीरत पढ़ के, वो कितना डेडिकेटेड होके इसको अपनी जिंदगी बना लिया था उन्होंने। तब फैला था इस्लाम, ऐसे ही नहीं फैल गया, कोई लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी तो कहाँ तक फैला। और आज हम लोग बैठ गए हैं ना, तो काम भी रुक गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को देख के खुशी हुई? जब भी किसी को देखती थी तो यही ख्याल आता था ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही है, ये भी उम्मत ही है, ये भी। तो सारे ही प्यारे लगते थे, फिर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। फिर मस्जिद नबी पे को घूम के भी देखा, बाहर से ही गुम्बद को देखा, उन आंखों को मुबारक हो जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, और अल्लाह ताला हमें भी कराए। अभी तो हम मस्जिद ही देख के बस खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि बस इतनी हद तक ही हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला वो दिन लेकर आए जबकि हम उनके सामने हों और वो वाकई हमारे से खुश हों कि जो हमने काम किया हो दुनिया में, और फख्र करें अपने हमारे कामों पे और जो एज उम्मत ही हमने किया उसके ऊपर। अल्लाह ताला सारा कबूल फरमाए, और दुआओं को और जो भी वहाँ पे छोटा मोटा जो भी थोड़ी बहुत इबादत हो सकी अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, जो कमियाँ रह गई, जो कोताहियाँ हुई, जो गलतियाँ हो गई अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे। एक इल्म की कमी वहाँ पे बहुत महसूस हुई कि लोगों के पास इल्म नहीं है, लोगों को पता नहीं है ना नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका पता है, ना ये पता है कि किस तरह से मस्जिद के आदाब क्या है, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है मस्जिद के अंदर, कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए मस्जिद में बैठ के, और वो वक्त कितना कीमती है जिसमें हम बैठ के इधर उधर की बातें और हमारी बातें नहीं ख़त्म होती, कि वहाँ बैठ के भी हमारी बातें और हमारी सेल्फीज और हमारी ये और हमारा वो नहीं ख़त्म होता। सोचो कि तुम किस जगह पे आए हुए हो, और उस जगह का एहतराम ये है कि हम फोकस्ड हो जाएं, मगर हम दुनिया को फिर अपनी जेब में डाल के और वहाँ ले आते, दुनिया को छोड़ के जाओ, मत अपने फ़ोन लेकर जाओ, मत अपनी ये चीज़ें लेकर जाओ कि फिर आप मैसेज देखो और फिर सोचो अच्छा इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मस्जिद में भी मैसेज, होटल में भी आके मैसेज, नहीं आप उस जब उस दुनिया में जाते हैं इसको पीछे छोड़ के जाओ, इसको साथ मत लेकर जाओ। वो भी ना करें, वो तो देखिए जब आप डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं तो उसमें तो मैसेज चलते रहेंगे ना। अब आप ये फोन लेकर जाएंगे तो आप हर एक उसके अंदर होंगे। जब आप वहां जाएं, वहां का फोन ले या यहाँ से लेकर जाते हैं वहां पे सिम लगाएं सिर्फ अपने हस्बैंड से बात करने के लिए कि आप कहाँ हैं या मैं कहाँ हूँ, ताकि एक दूसरे के गुम होने का खदशा हो। मगर ये जो हम ले जाते हैं और वहां से बैठ बैठ के हम अपने स्टेटस वो कर रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, क्या है ये तो सिर्फ दिखावा है। हमारा फोकस कैसे हो सकता है वहां पे उस वक्त? तो अगर आप चाहते हैं कि एक अल्लाह की तरफ सिर्फ ध्यान हो तो दुनिया को यहाँ ही छोड़ के जाए, उसको साथ नहीं लेकर जाए। कम से कम थोड़े दिन तो इंसान एक अल्लाह का होके रहे। और वहां पे जो स्टूडेंट से मुलाकात हुई, शायद उनमें से कुछ सुन भी रहे हो, इंतहाई खुशी हुई मुझे वहां के सऊदीया के स्टूडेंट से मिलके। और अल्लाह ताला ने हमारी मुलाकात दुनिया की बेहतरीन जगह पे कराई, और वो है हरम मक्का, कि वहां पे अल्लाह ने उनके साथ मुलाकात करवाई और मुझे उनके जो शौक और उनका जो पढ़ाई की लगन और जिस तरीके से वो कर रहे हैं और जो उनकी मतलब बेटियां हैं, जो यूथ माशाल्लाह जिस तरह से वो सीख रहे हैं, उसके ऊपर बहुत खुशी हुई। और अल्लाह ताला उनसे भी कबूल करे और उनका ये पढ़ना सीखना इसको आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ये दुआ करें कि इकट्ठा वहाँ लेकर जाए और हम वाकई जो ये सीरत का हमने इरादा किया तो अल्लाह हमारा जो ये सीरत का सफ़र है, दिल भी नहीं चाहता ये कभी ख़त्म हो जो हम सीरत पढ़ रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक दिन तो मुकम्मल होगा तो हमें अल्लाह ताला वहाँ ले जाके उन जगहों को दिखाए। ये भी मैंने पता कराया है कि खैबर पे अगर जाना हो तो मुझे बताया उसने ड्राइवर ने कि खैबर के किले वैसे के वैसे ही हैं लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो कुछ जगह हैं जहाँ पे इजाज़त नहीं होगी, मगर जिन जगहों पे हम जा सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला जाएंगे और अल्लाह लेकर जाए और सबको लेकर जाए। तो जो भी आसानी से जा सकता हो अपने जहन में अभी से रखें कि इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम है, तो उस वक्त फिर अभी से घर वालों को मनाना शुरू कर दें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।